ओम शांत। विशेष आज का विषय है आत्माभिमानी स्थिति का महत्व। बाबा का हर मुरली में विशेष दो बातों के ऊपर अटेंशन होता है, आत्माभिमानी बनो और मुझे याद करो, क्योंकि ये आत्माभिमानी स्थिति हमारा ये मूल लेसन है, चाहे ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का, चारों सब्जेक्ट का ये फाउंडेशन है। अगर हम इन चारों सब्जेक्ट को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इस लेसन को पहले पक्का करना पड़ेगा, यही हमें परिवर्तन यहां करना है। आज हमारे जीवन में जितनी भी ये समस्या आई इसका कारण है इस लेसन को हम भूल गए, हम आत्मा है ये भूल गए, इसीलिए चाहे विकार आए चाहे संस्कार आए जो भी बातें आई उसका कारण है देहभान। तो इन सभी बातों को अगर हमें परिवर्तन करना है तो ये आत्मा का लेसन हमें क्या करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा। आत्माभिमानी स्थिति वैसे तो हमारे पुरुषार्थ में उसका बहुत महत्व है। आत्माभिमानी स्थिति बनाने से हम अतीन्द्रिय जो सुख है वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हम कर पाते हैं, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति बनाने से प्रभु मिलन होता है, और जब प्रभु मिलन होता है तो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, और जिसको यह अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है उसके मन का भटकना बंद हो जाता है, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है, वो आत्मा तृप्त बन जाती है, जिसको बाबा कहते हैं कि पाना तासो पा लिया। जिस आत्मा ने यह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है उसके अंदर से ये गीत निकलेगा, इतना ही नहीं लेकिन उसकी कर्मेंद्रिय की चंचलता खत्म हो जाएगी, वो कोई भी विकारों के वश नहीं होगी क्योंकि सुख मिल रहा है। अगर फिर भी मेरी अगर कर्मेंद्रिया कहीं चंचल होती है इसका मतलब वो सुख की कमी है, इसलिए अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो यह आत्माभिमानी स्थिति से ही संभव है, इसलिए हमें आत्माभिमानी बनना बड़ा जरूरी है। जैसे अभी भी हम गीत सुन रहे थे, स्वयं का दर्शन आत्म दर्शन, क्योंकि स्वयं का दर्शन करने से या आत्माभिमानी स्थिति बनाने से हम स्वराज्य अधिकारी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, स्वराज्य अधिकारी स्थिति। और जिसकी इस संगम युग में स्वराज्य अधिकारी स्थिति है वही भविष्य में विश्व का राज्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सबका लक्ष्य क्या है, हमें भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करना है, राजा बनना है। तो राजा बनने का आधार क्या रहा, राजा बनने का आधार है आत्माभिमानी स्थिति। जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, आत्मानुभूति करेंगे, उतना हम भविष्य में राजा बन सकेंगे। इसीलिए इस लेसन के द्वारा ही हम घर बैठे अगर इसका हम अभ्यास करते हैं, चलते फिरते इसका अभ्यास करते हैं, हम राजाई की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आत्मा अनुभूति के द्वारा स्वराज्य अधिकारी की स्थिति बनाना आवश्यक है। और जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति रहती है तो हमारे पुराने संस्कार हमारे पर अटैक करते हैं, वो नहीं करेंगे। नहीं तो कई भाई बहने ज्ञान में चलते चलते फिर भी कोई ना कोई संस्कार के वश हो जाते हैं, विकारों के वश हो जाते हैं, क्यों, आत्माभिमानी स्थिति की कमी के कारण। जैसे कोई घर है, अगर घर में लाइट है तो वहां भूत नहीं आएगा, जिस घर में लाइट नहीं है वहां होता है क्या होता है, भूत आता है। इसी तरह इस देह रूपी घर में भी आत्माभिमानी स्थिति की लाइट जब कम हो जाते हैं तब विकार रूपी भूत क्या होता है, प्रवेश करता है। नहीं तो हम कभी कभी सोचते हैं कि पता नहीं ये संस्कार क्यों आ गया, इस विकार के वशीभूत हम क्यों हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि देह भान में आ गए। माया क्या करते हैं, देह भान में लाती है, और जब देह भान में आते हैं तो विकार वार कर लेते हैं। तो माया आने का गेट क्या हो गया, देह भान। इसीलिए अगर मुझे मायाजीत बनना है, ये आत्मा का दीपक सदा हमारा जलता रहे, अगर आत्मा का दीपक सदा जलता है तो हम मायाजीत बन सकते हैं। इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति के द्वारा पुराने संस्कारों के ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं, विकारों के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं, कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं, कर्मातीत बन सकते हैं। इसीलिए इस लेसन को हमें पक्का करना है, जीवन के अंदर दैवी गुण धारण करना, या जीवन में दैवी गुणों की अनुभूति करना, चाहे सहन शक्ति का गुण, शांति का गुण, एकाग्रता का गुण, धैर्यता का गुण, नम्रता का गुण, ये सभी गुण हमारे जीवन में अनुभव हो, वो कब संभव है, जब हम ये आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे, तो ये गुण ऑटोमेटिकली आपके जीवन में दिखाई पड़ेंगे। पुरुषार्थ है आत्माभिमानी स्थिति, और गुण है उसका रिजल्ट। इसलिए हमें इस आत्मा के लेसन को क्या करना है, थोड़ा सा पक्का करना है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जब खुद को भूल जाते हैं तो खुदा क्या होता है, भूल जाते हैं, बाबा भूल जाता है। बाबा भूलने का कारण क्या है, हम अपने आप को ही क्या करते हैं, भूल जाते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत होता है, जितना फाउंडेशन मजबूत है उतना बिल्डिंग, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मजबूत रह सकता है। इसी तरह माया के कोई भी आंधी और तूफान से स्वयं को बचाना है तो हमारा फाउंडेशन कौन सा, ये आत्मा का, जिसका फाउंडेशन पक्का है, चाहे विकारों के तरफ से, चाहे संस्कारों के तरफ से, चाहे कोई कार्मिक अकाउंट के तरफ से, आपस में एक दूसरे के साथ जो हिसाब होते हैं उसके तरफ से, चाहे कोई शारीरिक प्रॉब्लम्स भी आएंगे, लेकिन कोई भी विघ्न और परिस्थिति में वो आत्मा हलचल में नहीं आएगी, पास हो जाएंगे। इसलिए ये आत्मा का फाउंडेशन हमारा क्या करना, क्या हो, पक्का हो। और जितना हमारी आत्मा का पाठ पक्का है हम निर्भय बन सकेंगे, भविष्य में विनाश को देखना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं उस विनाश को कौन देख सकेगा, जो आत्माभिमानी स्थिति में है, क्योंकि जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं उनको डर नहीं लगेगा। तो उस स्थिति को अभी हमें क्या करना है, बनाना है। यही वास्तव में हमारी तपस्या है, चलते फिरते अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके स्वयं के स्मृति में रहना, यह तपस्या। और जब इसी तपस्या में हम अंदर से अंदर बिजी है, यह हमारे आत्माभिमानी स्थिति है, तब हमारी देखते हुए न देखने की अवस्था रहेगी। हम सब कुछ देख रहे, आंखें खुली है, कान खुले हैं, तो भी देखते हुए भी न देखने की, सुनते हुए भी न सुनने की वो अवस्था रहेगी। और जब हम सारा दिन इस अवस्था में रहते हैं, इस आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, तो शाम के समय थोड़ा सा जो हम बैठ करके योग करते हैं, उस योग में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। नहीं तो कई भाई बहने जब थोड़ा सा समय योग की लगाने के लिए बैठते हैं, तो योग में जब बैठेंगे तो जो सारा दिन देखा है, जो सुना है, वही बातें उनको याद आती है। फिर कहते हैं पता नहीं योग लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारा दिन इस आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रहे। इसलिए आत्माभिमानी का जो पहला लेसन है, इसके तरफ हमारा ध्यान जरूरी है। आज ब्रह्मा बाबा का अनुभव हम सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा ने क्या पक्का किया था? ब्रह्मा बाबा ने साधारणता से इतना ऊंचा पद प्राप्त किया, किस आधार से? बाबा ने क्या पक्का किया? मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा, आत्मा आत्मा, कितना बाबा ने पाठ पक्का किया। तो आज हमारा इस पाठ के तरफ कितना ध्यान है? बाकी सेवा में लगे रहते हैं, औरों को संदेश भी देने का पुरुषार्थ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो मेरी आत्माभिमानी स्थिति जो निरंतर रहनी चाहिए, जो अंदर से जो आत्मा की जो चमक बढ़नी चाहिए, वो क्या वो निरंतर है? और यही हमारा पुरुषार्थ है, और इससे ही भविष्य की प्राप्ति है। इसीलिए अभी आप सभी आए हैं मधुवन में, तो इस लेसन को थोड़ा सा पक्का करके जाओ। और अभी बाबा भी आने वाले हैं, तो बाबा के मिलन का भी आपको इसी स्थिति से अनुभव होगा। जिसका आपका यह आत्मा का पाठ पक्का होगा, आत्माभिमानी स्थिति में बैठेंगे, तो बाबा के मिलन का भी आप बहुत अच्छा अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि बाबा शक्तियां देता है, किसको देता है? आत्माओं को देता है। उस शक्ति की अनुभूति करने के लिए हमारी वो स्थिति चाहिए। तो इसी चार पांच दिनों में भले हमें एक अलग अलग सेवा मिली है, सब कुछ करते हुए भी हम अंदर से उस स्थिति को जमाने का पुरुषार्थ करें, ताकि जिस दिन बाबा आएंगे उसी दिन हमें बहुत अच्छा उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो जाए, उस शक्तियों का अनुभव हो जाए, ताकि संसार से ऑटोमेटिकली वैराग आ जाएगा। वैराग किया नहीं जाता, वैराग ऑटोमेटिकली आता है। जिसको ये प्रभु मिलन का आनंद हो, प्रभु मिलन का अनुभव होगा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, ऑटोमेटिकली संस्कारों से, विकारों से, दुनिया से वैराग आ जाएगा। वो चीजें अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी। अब ज्ञान है, लेकिन कभी कभी हम संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं, नहीं चाहते तो भी हो जाते। क्यों? क्योंकि वो अतीन्द्रिय सुख का, वो प्रभु मिलन का जितना चाहिए उतना अनुभव नहीं है। इसीलिए कंट्रोलिंग पावर और रोलिंग पावर नहीं है। तो इसलिए ये आत्माभिमानी स्थिति के द्वारा ही संभव है। चलो 2 मिनट उसी आत्माभिमानी स्थिति में अपने परम धाम में जाकर के अनुभव करो। ये आत्मा का लेसन, इस ज्ञान मार्ग का मूल लेसन है। यही हमारा संगम युग का लक्ष्य है, यही हमारी तपस्या है। एक है सत्ययुग का लक्ष्य और दूसरा है संगम का लक्ष्य। तो जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा उसको सत्ययुग का लक्ष्य मिल ही जाएगा। सतयुग का लक्ष्य संगम के लक्ष्य की परछाई है। संगम का लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, आत्माभिमानी बनना, यह संगम युग का लक्ष्य। जिसको बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं बाप समान बनना। और जब बाप समान बनेंगे, अशरीरी बनेंगे, विधेयी बनेंगे, तो सतयुग में जो प्राप्ति है वो प्राप्तियां ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। सोचने की जरूरत नहीं कि मिलेगे या मिले न मिले। अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, वो पढ़ाई तो नहीं कर रहा है, बैठ करके यही सोच रहा है मैं नौकरी, पढ़ाई पूरा करके नौकरी करूंगा, फिर ये करूंगा, मकान बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, ये करूंगा, पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, लेकिन ये चिंतन में समय बिता रहा है, और लास्ट में वो फेल हो गया तो क्या हो जाएगा? जो भी उसने सोचा सब कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो इसी तरह अगर मैंने अशरीरी बनने का अभ्यास नहीं किया, मैंने विधेयी बनने का अभ्यास नहीं किया, मैंने आत्माभिमानी बनने का अभ्यास नहीं किया, अब इतना ही सोच रहे कि सतयुग में मैं जाऊंगा, सतयुग में ये करूंगा, ये करूंगा, ये तो टाइम वेस्ट हो गया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे भविष्य के बारे में, भविष्य में क्या क्या मिलेगा, कैसे होगा, उसके सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करो। ये तो सतयुग की बातें याद आने से एक नशा चढ़ना वो अलग चीज है, बाकी उन बातों को चिंतन करना कब आएगा कैसा होगा ये टाइम वेस्ट है। इसीलिए अशरीरी बनो, आत्माभिमानी बनो, तो इससे आपका टाइम सफल हो जाएगा। क्योंकि जितना हम अशरीरी अवस्था में रहते हैं तो बाबा जैसे कोई कंबाइंड है ये आप अनुभव कर पाएंगे। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं तो बाबा ऑटोमेटिकली याद आता है, परमधाम ऑटोमेटिकली याद आता है, बुद्धि इस दुनिया से ऑटोमेटिकली उपराम होंगी। इसीलिए पहले हमें आत्माभिमानी बनना जरूरी। इसलिए यह आत्मा का लेसन, इस ज्ञान मार्ग का बहुत महत्व का लेसन है। अगर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, मेरे जीवन में कोई समस्या आते हैं, मेरा योग नहीं लगता, मेरी धारणाएं ठीक नहीं, ये सब क्यों हो रहे हैं? आत्माभिमानी स्थिति की कमी के कारण। तो इस आत्माभिमानी स्थिति को ही हमें बनाना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। चाहे कोई गुणों की कमी है, चाहे सहन शक्ति की कमी है, चाहे धैर्यता का कमी है, चाहे क्रोध आता है, इस सब का कारण है आत्माभिमानी स्थिति के पुरुषार्थ की कमी। तो इसलिए हमें आत्माभिमानी स्थिति को बनाना है ताकि सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे तो उसका बहुत महत्व है, लेकिन ये कुछ बातें बताए। लेकिन ये आत्माभिमानी स्थिति को हम कैसे बनाएं, उसका अनुभव कैसे करें, उसके लिए पांच छह बातें आपको सुनाते। पहली बात है, अगर आत्मा की अनुभूति करनी है, सोल कॉन्शियस स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए जो आत्मा के निजी सात गुण हैं, उस सात गुणों के तरफ अटेंशन देना है, जिसको बाबा कहते सतो प्रधान। इस सात गुणों में से कोई एक दो गुणों की कमी होते हैं तब देहाभिमान आता है। तो सात गुण कौन से? ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप। ये जो सात स्वरूप है, सारा दिन इस स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ करना है। जब ये सात स्वरूपों में आप स्थित रहेंगे तो सोल कॉन्शियस का अनुभव आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर सारा दिन आप ज्ञान स्वरूप नहीं रहेंगे तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए सारा दिन जो बाबा ने मुझे जो ज्ञान सुनाया है, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, देखना कैसे, जो भी कुछ नियम मर्यादा जो उसका स्वरूप बनकर के चलना है। जब उसका स्वरूप बनकर के रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आत्मा का अनुभव शांत स्वरूप है। जितना हम अपने शांत स्वरूप में रहेंगे तभी जाकर के आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे। अगर हम अपने शांत स्वरूप में ही नहीं रहेंगे तो आत्मा का अनुभव भी नहीं होगा। प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, जिससे मुझे आनंद आता है, उन आनंद की बातों को याद करें, उस आनंद की स्थिति में रहे। जिससे मेरा आनंद गुम हो जाता है वो बातें मुझे नहीं करनी है, तब आत्मस्वरूप का अनुभव होगा। शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप। तो इस सात स्वरूप की तरफ हमारा थोड़ा सा अटेंशन हो सारा दिन, तब आत्मा का अनुभव सहज हो जाएगा। दूसरी बात है, अगर मुझे आत्मा का अनुभव करना है उसके लिए हमारा दृष्टिकोण और दृष्टि सकारात्मक हो। जितनी हमारी दृष्टि सकारात्मक या दृष्टिकोण सकारात्मक, उतना हम आत्मा अभिमानी स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि नकारात्मक दृष्टिकोण से विचार निगेटिव चलते हैं, विचार फास्ट चलते हैं। और जिसके विचार निगेटिव है, जिसके विचार फास्ट है, वो सोल कॉन्शियस का अनुभव नहीं कर पाएगा, आत्मानुभूति नहीं कर पाएगा। इसीलिए सकारात्मक दृष्टिकोण। इसीलिए देखो बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है। क्यों? क्योंकि ड्रामा के ज्ञान के द्वारा हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बन जाता है। विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक चिंतन चलता है। जो भी जीवन में कुछ विघ्न या समस्या आते हैं उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण या दृष्टि सकारात्मक हो, तब जाकर के हमारी ऊर्जा बच जाएगी। आज जो हमारी ऊर्जा वेस्ट हो जाते हैं निगेटिव सोचने से, इसलिए सारा दिन सकारात्मक चिंतन की तरफ ध्यान देना है। कुछ भी घटना हो जाए, कुछ भी बातें हो जाए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इससे बिंदी लगेगी। और जिसको जिसकी बीती बातों को बिंदी लगते हैं वही बिंदी स्वरूप में स्थित रह सकता है। जो बीती हुई बातों का बार बार चिंतन करता है, क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, वो बिंदी की अनुभूति नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, जीवन की हर घटना के तरफ हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो। आज जीवन में छोटी छोटी बातें आती हैं, कुछ निगेटिव भी बातें आती हैं, लेकिन उन बातों के द्वारा भी मेरा कल्याण ही होगा। और ये बातें भी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे ही कोई जन्मों में बोए हुए कर्मों का ये फल है। इसलिए नथिंग न्यू, उसके लिए दूसरा कोई दोषी नहीं है। हम दूसरे के तरफ दोष देते हैं और दूसरे के प्रति भी निगेटिव हमारा दृष्टिकोण बन जाता है। और जिसका दृष्टिकोण निगेटिव है, शंकाएं कुशंकाएं, और जिसके कारण संकल्प में तूफान आता है, और जिसके संकल्प में तूफान आता है वो स्वयं का दर्शन कैसे कर सकता है, वो आत्मानुभूति कैसे कर सकता है। इसलिए अगर मुझे आत्मा की अनुभूति करनी है तो क्या चाहिए? सकारात्मक दृष्टिकोण, विचार में शांति, विचार एकाग्र, जिसको कहते संकल्प। जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? शांत। जितना पानी शांत है चंद्रमा को देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपने आत्मा का दर्शन करना है तो हमारे विचार कैसे हो? शांत। कोई भी विपरीत परिस्थिति में, विपरीत घटनाओं में भी हमारी शांति भंग ना हो, और वो तब संभव है जब हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो। इसलिए अपने दृष्टिकोण को और दृष्टि को सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है, तब जाकर के वो सोल कॉन्शियस स्थिति का अनुभव हम कर पाएंगे। पहली बात बताई, सात स्वरूपों का अभ्यास। दूसरी बताई, दृष्टिकोण हमारा सकारात्मक। तीसरी बात है, अगर मुझे आत्मा का अनुभव करना है, आत्माभिमानी स्थिति की अनुभूति करनी है, उसके लिए जरूरी है, अगर आत्मा का अनुभव करना है, आत्माभिमानी स्थिति की अनुभूति करनी है, उसके लिए जितनी हमारी नम्रता, जिसको ही बाबा ने अंतिम समय तीन शब्द यूज किए थे, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। और जो निरहंकारी है वही क्या बन सकता है? निराकारी स्थिति का अभ्यास या अनुभव कर सकता है। अगर हमारी निरहंकारी स्थिति नहीं है तो निराकारी स्थिति का या आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव नहीं होगा। इसलिए हर बात में हम, हमारी वाणी निर्मल हो, सदा नम्रचित होकर के रहे, निरहंकारी होकर के रहे। क्योंकि जिसको कोई भी प्रकार का अभिमान है, कोई कला का, कोई विशेषता का, कोई गुणों का, उसके मन में भी संकल्प का तूफान होता है, जिसको कहते ईगो। ईगो इज डेंजर। अभिमान आया और गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। जहां अभिमान आता है ना वहां शांति है, ना वहां एकाग्रता है, ना वहां धैर्यता है। जहां अभिमान है वहां कोई गुण नहीं है, सब गुण भाग गए, वहां अवगुण आ गए। इसीलिए हमें कोशिश करके अभिमान से क्या करें? मुक्त रहे। जितना हम अभिमान से मुक्त बनेंगे उतना निराकारी स्थिति का अभ्यास या आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होते हैं, शुरू शुरू में हम थोड़ा इसका अभ्यास करना शुरू करते हैं, लेकिन कोई सेवा की सफलता में चलते चलते हमें कोई सेवा में सफलता मिल जाते हैं, थोड़ा कुछ प्राप्तियां हो जाती हैं, तब क्या हो जाता है, धीरे धीरे अभिमान जागृत होना शुरू हो जाता है। और जब अभिमान आया तो फिर हम अपने आप को क्या हो जाते हैं, जो ये आत्मा का लेसन है उसको भूल जाते हैं। इसलिए निरहंकारी स्थिति बना करके रखना यह आवश्यक है। अगर मेरी निराकारी स्थिति नहीं रहती तो जरूर मेरे अंदर कोई ना कोई प्रकार का अभिमान है। और अभिमान है, उसकी निशानी क्या है? अभिमान वाला दूसरों को सम्मान नहीं देगा, अभिमान वालों को क्रोध जरूर आता है, क्रोध आएगा या रोब आएगा। जैसे कुकर होता है ना, कुकर गर्म होते होते सीटी भी मार जाता है, इसी तरह अभिमान वाला भी क्या करता है, किसी के अवगुण देखते देखते, उसका चिंतन करते करते एक दिन सिटी भी मार देता है, तुम्हारा एक साल से देखा अब मेरे से सहन नहीं होता, तो ऐसी आत्मा फिर एकाग्र कैसी बन सकती। इसीलिए हमें सदा ही क्या करना है, निरहंकारी होकर के चलना है। जो निरहंकारी है वही निराकारी स्थिति में रह सकता है, वही सोमानों में रह सकता है। अभिमान वाला कभी भी सोमानों में नहीं रह सकता, और सोमान के बिना सोल कॉन्शियस बनना असंभव है। इसलिए हमें निरहंकारी स्थिति को बनाना है, ये तीसरी बात है। चौथी बात है, अगर मुझे आत्मा की अनुभूति करनी है, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है, उसके लिए पवित्रता की धारणा भी बड़ी जरूरी है। जितनी हमारी पवित्रता है उतना हम सोल कॉन्शियस का अभ्यास कर सकते हैं। इसीलिए देखो बाबा, जब भी शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं तो एक साल के बाद फिर बाबा से मिलने के लिए चांस मिलता है। एक साल तक अगर हमारी पवित्रता की अच्छी धारणा है तो हम सोल कॉन्शियस का अनुभव कर पाएंगे और बाबा से भी मिल पाएंगे। अगर हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं है तो बाबा का मिलन भी नहीं होगा। तो एक बार जैसे हम मधुवन में बैठे थे, बाबा से मिल रहे थे, और बाय चांस मुझे उस समय माताओं के साइड पर जगह मिली थी। तो उस समय गुलजार दादी के तन में अव्यक्त बाप दादा आए थे, आधी सी ज्यादा मुरली हो चुकी थी। तो एक माता दूसरी माता जी को बोलते ही, बाबा जी कब आएंगे? तो दूसरी माता जी कहते थी, ये जब माता जी बैठे है ना, वो उठ के जाएंगे तब तो बाबा जी आएंगे। माना बाबा आए थे, मुरली चल रही थी, लेकिन उस माताओं को अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि ये आत्माभिमानी स्थिति की कमी। अगर सचमुच हमारी आत्माभिमानी स्थिति है तो जब बाबा आप चाहे लास्ट में बैठे, कहीं भी कोने में बैठे हैं, उस समय का जो वाइब्रेशंस है, उस समय का जो लाइट मैट की स्थिति का अनुभव है, वो न्यारा ही होगा। इसलिए ये आत्मा का अनुभव बड़ा जरूरी है प्रभु मिलन के लिए। अगर हम एकदम सामने बैठे लेकिन आत्मा विमान स्थिति में नहीं है तो वो जो अनुभव है वो अनुभव नहीं हो सकता। और ये आत्मा विमान स्थिति बनाने के लिए पवित्रता बड़ी मदद करती है। जितनी जिसके पास पवित्रता की क्वालिटी ऊंची है, मनसा वाचा कर्मणा, उतना उसकी आत्मा की चमक भी ज्यादा होती है। जिसकी मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की क्वालिटी ऊंची, उतना उस आत्मा की पवित्रता की चमक भी ऊंची। इसीलिए आत्मा की चमक को बढ़ाने के लिए क्या करना है, पवित्रता की धारणा की तरफ अटेंशन। तो यह है चौथी बात। पांचवी बात है, अगर आत्मा अभिमानी स्थिति का अनुभव करना है, अभ्यास करना है, उसके लिए विधि पूर्वक योग। जब भी हम थोड़ा सा समय हमें मिलता है, चाहे क्लास के पहले या जब भी बैठ करके योग लगाते हैं, बाबा से योग लगाने से बाबा की जो शक्ति आते हैं, उस शक्तियों के द्वारा भी हम आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन वो योग हमारा विधि पूर्वक हो। ऐसे नहीं कि योग में बैठे हैं, मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है, और योग में आधा घंटा एक घंटा बैठ गए। अगर विधि पूर्वक योग नहीं है तो आत्माभिमानी स्थिति भी नहीं होगी। इसीलिए कोशिश करके हम जब भी योग में बैठते हैं उसको विधि से योग करना बड़ा जरूरी है। जिस तरह से जैसे आजकल मोबाइल निकला है, मोबाइल को विधि से चार्ज करो, तो विधि से चार्ज करने से सारा दिन बैटरी फुल चार्ज होंगी। अगर ठीक चार्ज नहीं किया तो बैटरी चार्ज नहीं होंगी। तो इसी तरह हमें भी अपनी विधि से अपनी आत्मारूपी बैटरी को क्या करना है, चार्ज करना है। उसके साथ साथ छठी बात है, अगर आत्मा का अनुभव करना है, अभ्यास करना है, उसके लिए अमृत वेले का योग, अमृत वेले का योग जितना आपका पावरफुल है, शक्तिशाली है, उतना सारा दिन आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति बनी रहेगी। अगर अमृत वेले की तरफ आपका ध्यान नहीं है, अटेंशन नहीं है, तो सारा दिन सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं रहेगी। आप कभी देखो, जिस दिन आपका अमृत वाला बहुत अच्छा रहता है, शक्तिशाली रहता है, तो सारा दिन आपकी ब्रुकुटी में जैसे आत्मा की ज्योति जगी हुई है। और जब आपकी आत्मा की ज्योति जगी है तो सारा दिन आपको किसी की भी कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी। कौन क्या कर रहा है आप जैसे देखते हुए न देखने की अवस्था रहेगी। और बिल्कुल सारा दिन आपकी शक्तिशाली स्थिति रहेगी और बाबा भी सारा दिन याद रहेगा। इसलिए अगर वो सोल कॉन्शियस स्थिति को बना करके रखना है, नेचुरल रखना है, उसके लिए अमृत वेले की तरफ थोड़ा सा अटेंशन हो। तो ये संस्कार अब हमें यहां से भर के जाना है, ताकि कर्म क्षेत्र पे जाने के बाद भी आपको वो स्थिति बनी रहे। आज मनुष्य और देवता में यही फर्क है। मनुष्य में देह का भान है और देवताओं में आत्मा का भान है। और इसलिए आज देवताएं क्यों सुखी हैं, ये वो इसीलिए सुखी नहीं कि खुश नहीं कि उनके पास सोना है, चांदी है, बहुत सारा है, इसीलिए खुश नहीं है। लेकिन खुश है वो आत्माभिमानी स्थिति, जिसकी आत्माभिमानी स्थिति है, भले यहां संगम युग में उसके पास कुछ नहीं है, बेघर है, लेकिन उसकी खुशी बहुत होगी, उसको नशा बहुत चढ़ा रहेगा, जिसको बाबा कहते ईश्वरीय नशा। वो ईश्वरीय नशा रखने के लिए आत्माभिमानी स्थिति बड़ी जरूरी है। जितना आपको आत्माभिमानी स्थिति होगी, उतना जैसे आपको लग पता नहीं क्या मिला हुआ है, आप वो नशा रहेगी। इसलिए हमें आत्माभिमानी स्थिति को बना करके रखना है। उसके साथ साथ आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करने के लिए सोमानों के अभ्यास, जितना आप सोमानों के अभ्यास करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातों के स्मृति में रखें रहेंगे, उतनी आपकी वो स्थिति बन सकती है। ईश्वरीय नशा से आंतरिक शक्तियां जागृत होती है। इसलिए बार बार हमें क्या करना है, कोई ना कोई अच्छे अच्छे जो बाबा नशा चढ़ाते हैं, बच्चे तुम तो शिव शक्तियां हो, तुम तो पवित्रता की देवी हो, तुम तो भक्तों के इष्ट हो, जो बाबा हमें जो सोमान देते हैं, उस सोमान में स्थित रहना जरूरी है। और जितना सोमान में रहेंगे, उतना आपकी आंतरिक शक्तियां जागृत होगी और जिससे आत्मा में बल आएगा, आत्मा का मनोबल भी बढ़ेगा, आत्मा की एनर्जी भी बढ़ेगी, और जिससे सारा दिन नेचुरल आपकी सोल कॉन्शियस की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए सोमानों का अभ्यास करना जरूरी है। इसलिए हमें लक्ष्य लेना है कि रोज कोई ना कोई सोमाना का अभ्यास, नहीं तो हम क्या करते, कोई सोमान नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, फिर सारा दिन किसी ने कुछ आपको कुछ कहा तो उसका चिंतन चलता है। अगर निगेटिव चिंतन चलेगा तो शक्तियां खत्म हो जाती हैं, स्वयं को कमजोर अनुभव करते हैं, और जो स्वयं को कमजोर अनुभव करता है वही देह का भान है। इसलिए हमें ये जो पांच छह बातें बताई, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन पांच छह बातों की तरफ भी आप अटेंशन रखेंगे तो सहज ही आप जो पहला लेसन है उसका अनुभव कर पाएंगे। और जब ये लेसन आपका पक्का होगा या आत्मा का अनुभव होगा, तो आपके जीवन में जो छोटी छोटी जो समस्या आती है, चाहे कोई आपको आपका अपमान कर रहे हैं, आपको सम्मान नहीं दे रहे, आपके जीवन में कोई छोटी छोटी विघ्न आ रहे, उनका चिंतन आपको नहीं चलेगा। ये चिंतन क्यों चलता है? क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। तो आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाला वो स्वयं ही ऊपर रहता है, और जो स्वयं ऊपर रहता है इन छोटी छोटी बातों का चिंतन नहीं चलेगा। इसलिए बाबा हर मुरली में बार बार इस लेसन के तरफ थोड़ा सा अटेंशन खिंचवाते। कम से कम हम अमृत वेले से लेकर के सवेरे 8 बजे तक अगर हम थोड़ा सा अंदर से आत्माभिमानी स्थिति की तरफ अच्छी तरह अटेंशन देते हैं तो सारा दिन वो स्थिति हमारी ऑटोमेटिकली बनी रहेगी। और ये स्थिति रहने से आपकी मनसा सेवा ऑटोमेटिकली होगी। भले आप रात को सोए हैं तो भी आपकी मनसा सेवा चलती रहेगी, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में रहने से वाइब्रेशंस फैलते हैं। आज हमारा जो टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम वेस्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रहते उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। और खास बाबा ने पिछले मुरली में से सीजन की बाबा ने कहा कि बच्चे समय का खजाना बड़ा महत्व का है, तो हर पल मेरा समय सफल हो जाए, हर पल मुझे बाबा की याद आए, इसलिए ये आत्माभिमानी स्थिति का लेसन क्या करना है? पक्का करना है। इससे जीवन में बहुत सारी धारणाएं आएंगी, इससे जीवन में गुण आएंगे। तो इसी 6-7 दिनों में अपना कारोबार करते हुए भी, चलते फिरते हुए भी, इस आत्मा के लेसन को हमें क्या करना है? पक्का करना है। और उसके लिए कुछ जो बातें बताई, एक तो 7 जो गुण है उस गुण के स्वरूप में टिकने का अभ्यास, सारा दिन चेक करना है कि मैं ज्ञान स्वरूप होकर के चल रही हूं, मैं शांत स्वरूप की स्थिति में हूं, मैं प्रेम स्वरूप की स्थिति में हूं, आनंद स्वरूप में हूं, मैं शक्ति स्वरूप की स्थिति में हूं। तो इस तरह से इस स्वरूप की अनुभूति करेंगे तो सोल कॉन्शियस का अनुभव, और दृष्टिकोण सकारात्मक, कुछ भी निगेटिव बातें आएंगी तो तुरंत सकारात्मक लो, नहीं नहीं जो हुआ अच्छा हुआ, बीती को बिंदी, जितना बिंदी लगाएंगे उतना वो आपकी एनर्जी बच जाएंगी, तो सहज सोल कॉन्शियस में स्थित रह सकेंगे। इसके साथ साथ चलते फिरते वही स्वरूप में ईश्वरीय नशे में मुझे कौन मिला है, मैं किसकी हूं, अपने बीच बीच में अपने परम धाम के उस स्थिति में जहां से हम आए थे, अपने घर की स्मृति में, तो इस तरह से अभ्यास करेंगे, ईश्वरीय नशे में रहेंगे तो सहज ही हम सोल कॉन्शियस में स्थित रह सकेंगे। तो इसलिए हमें अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, कर्मेंद्रिय का राजा बनना है, भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करना है, जीवन में गुणों की धारणा करनी है, तो ये सोल कॉन्शियस का आत्माभिमानी का लेसन हमें क्या करना है? पक्का करना है। और इससे आपको प्रभु मिलन का आनंद भी अच्छी तरह हो सकेगा। तो कल से हम शुरुआत करें बिल्कुल सारा दिन और सोल कॉन्शियस में रहने का अभ्यास, बार बार स्वयं को स्मृति करना है मैं कौन, और बीच बीच में उस अपने परम धाम के स्थिति में जाकर के उस ओरिजिनल अवस्था में जाकर के टिकने का अभ्यास। तो यह आत्मा का लेसन पक्का करके हमें जाना है। ठीक है, ओम शांति।